समाचारों में ऑस्ट्रेलिया मना रहा है मॉबो उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के 30 वर्ष। फेडरल सरकार ने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का समर्थन करते हुए फेयर वर्क कमीशन को दिया अपना सबमिशन। और भारत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बैठक के लिए बुलाया गया दिल्ली में। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। आज ऐतिहासिक माबो निर्णय की 30वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर ऑस्ट्रेलियन लोग इस ऐतिहासिक माबो निर्णय को याद कर रहे हैं। 3 जून 1992 को उच्च न्यायालय ने टेरा नलियस के कानून सिद्धांत को उलटते हुए अपना निर्णय सुनाया था। टेरा नलियस ने दावा किया था कि व्हाइट सेटलमेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया किसी की भूमि नहीं थी। स्वदेशी नेता एडी कोई की मावो कानूनी चुनौती को लेकर आए, लेकिन ये फैसला सुनाए जाने से 5 महीने पहले केवल 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बेटी गेल माबो का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 30 वर्षों में इस संभाल की दिशा में छोटे छोटे कदम उठा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बड़े बदलाव की गति बढ़ रही है।
But now it's time to just lengthen our stride, to make things move, and you know, to take those things that are given to us now and sit down and have a conversation, a better conversation, and sharing that knowledge to actually move us forward as a nation.
माबो के फैसले ने नेटिव टाइटल एक्ट और नेटिव टाइटल ट्रिब्यूनल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप फेडरल कोर्ट में 556 निर्धारण हुए। फेडरल सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि का समर्थन करते हुए फेयर वर्क कमीशन को अपना निवेदन दिया है। सरकार ने पुष्टि की है कि सबमिशन वास्तविक मजदूरी में उस वृद्धि के लिए है जो कम से कम मुद्रास्फीति के अनुरूप है, और ये 21 साल के उच्च स्तर 5.1% पर चल रहा है। फेडरल चुनाव अभियान के दौरान कम वेतन वृद्धि और रहने की लागत प्रमुख मुद्दे थे, और फेयर वर्क आयोग की वार्षिक वेतन समीक्षा को प्रस्तुत करना लेबर का एक चुनावी वादा था। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कप्लेस रिलेशंस मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि सरकार का सबमिशन सभी कम वेतन वाले श्रमिकों पर लागू होता है।
Who are these people? They're largely the heroes of the pandemic. They're the people who both sides of politics made lovely speeches about after the pandemic, but only one side of politics, namely the Labor government now, was willing to fight for. So we're talking about people on awards that are close to the minimum wage as well. You'll find that, for example, shop assistants, you'll find it with cleaners, you'll find it with a lot of people in the care economy. So low wage workers is the reference that's there.
महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल ने पाया है कि कैशलेस कल्याण कार ये साबित करने में विफल रहा है कि इसने सामाजिक नुकसान को कम किया है, जो कि पिछली गठबंधन सरकार की इस योजना के बारे में प्रमुख तर्क था। एक रिपोर्ट में महालेखा परीक्षक ग्रैंड हीहिर ने निष्कर्ष निकाला है कि सरकार ने ये नहीं दिखाया कि कार्ड अपने इन उद्देश्यों को पूरा कर रहा था। ये भी पाया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज के भीतर भी इस योजना की आंतरिक निगरानी बहुत कम थी। सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के एक उपाय के रूप में किसी व्यक्ति के भुगतान का 80% पर रोक लागू करके उस व्यक्ति द्वारा खर्च की जाने वाली नकदी को सीमित करके इस कार्ड को बढ़ावा दिया गया था। कार्यक्रम की लागत पिछले साल 36.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, और 16,000 से अधिक लोग इस फरवरी तक कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर हुए। नई सामाजिक सेवा मंत्री अमेंडा रिश्वर्थ ने रिपोर्ट के जवाब में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कैशलेस कार्ड को खत्म करने की योजना पर पहले ही ब्रीफिंग की जा चुकी है, जिसका वादा फेडरल चुनाव अभियान के दौरान लेबर ने किया था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीसी पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा में इस सप्ताह के अंत पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। 3 दिवसीय यात्रा के लिए श्री अल्बेनीसी के साथ यात्रा करने वालों में विदेश मंत्री पेनी वोंग, व्यापार मंत्री डॉन फेरल, उद्योग मंत्री एड हुसिक और डार्विन स्थित सांसद ल्यूक कॉसलिंग होंगे। इस यात्रा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ बातचीत और इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन जलवायु और बुनियादी ढांचे के लिए एक ऑस्ट्रेलियन प्रस्ताव शामिल होगा। इस यात्रा के दौरान आसियान महासचिव दातो लिम जॉक योहोई के साथ एक बैठक भी शामिल होगी। श्री अल्बेनीसी ने चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कृत्यों में से एक के रूप में इंडोनेशिया का दौरा करने का संकल्प लिया था। मेलबर्न के पश्चिम में हिट एंड रन की घटना में 3 साल के बच्चे की मौत के बाद 73 वर्षीय एक महिला ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया है। कल गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे सनशाइन नॉर्थ की मैकेंटायर रोड पर एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। हीथकोट जंक्शन की एक महिला ने आज सुबह पुलिस के सामने स्वयं को पेश किया। विक्टोरिया के पुलिस अधीक्षक जॉन फिट्ज़पैट्रिक का कहना है कि ये दुखद घटना सभी को वाहन चलाते समय सतर्क रहने की याद दिलाती है।
Driving a motor car, you know, on a road, you know, it's a dual responsibility. So everyone needs to be aware of what's around them. Things happen quickly, and like this young child has run out really quickly. People need to be travelling at a speed where they, if something like that occurs, they can take the action that they need to try and avoid it.
नॉर्दर्न टेरिटरी की पुलिस ने डार्विन के पास हिट एंड रन में एक स्वदेशी महिला की मौत के मामले में एक पुरुष और एक महिला को आरोपित किया है। पुलिस का मानना है कि सोमवार की रात स्टुअर्ट हाईवे पर महिला को एक कार ने टक्कर मार दी थी, लेकिन उसके शव को दुर्घटना स्थल से हटाकर झाड़ियों में छिपा दिया गया। एलिस स्प्रिंग और एडिलेड से डार्विन को जोड़ने वाले राजमार्ग पर एक यात्री को महिला के पैर का एक हिस्सा मिलने के बाद व्यापक स्तर पर जांच शुरू हुई। पामस्टन के एक 23 वर्षीय व्यक्ति और एक 50 वर्षीय महिला को कल यानी बृहस्पतिवार 2 जून को गिरफ्तार किया गया था। पिछले 18 महीनों में टेरिटरी सड़कों पर सभी 11 पैदल चलने वालों की मौत स्वदेशी लोगों की है और इनमें से 6 हिट एंड रन के मामले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास में पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर स्कूल की शूटिंग के मद्देनज़र देश के बंदूक कानूनों को कड़ा करने के लिए कांग्रेस के सामने एक भावुक अपील की है। व्हाइट हाउस का भाषण अयोवा में चर्च के कार पार्क में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या करने के कुछ समय पहले दिया गया था और एक दिन बाद ओक्लाहोमा में एक चिकित्सा कार्यालय में एक व्यक्ति ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। श्री बाइडेन चाहते हैं कि कांग्रेस हथियारों पर प्रतिबंध लगाए, पृष्ठभूमि की जांच का विस्तार करे और एक अन्य बंदूक नियंत्रण कानूनों को लागू करे।
I've been in this fight for a long time. I know how hard it is, but I'll never give up. And if Congress fails, I believe this time a majority of the American people won't give up either. I believe the majority of you will act to turn your outrage into making this issue central to your vote. Enough. Enough, enough.
और भारत में NDTV के समाचार के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के लिए दिल्ली में बुलाया गया है। कल बृहस्पतिवार को हमलावरों ने बैंक मैनेजर सहित 2 लोगों की उनके ऑफिस में हत्या कर दी थी। जैसा कि विदित है, कश्मीर घाटी में एक हफ्ते के भीतर अब तक 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। उस घटना के कुछ घंटों बाद ही मध्य कश्मीर घाटी में 2 प्रवासी मजदूरों को भी हमलावरों ने गोली मार दी। दोनों को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर एक ने दम तोड़ दिया। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 72 सेंट और भारत के 56.27 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में नेटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने सुपर नेटबॉल ग्रैंड फाइनल के लिए वार्षिक होस्टिंग अधिकार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार को बेचने के निर्णय का बचाव किया है। पर्थ का RAC अरीना 3 जुलाई को इस साल के निर्णायक के लिए स्थल होगा। होस्टिंग अधिकार पर्थ में जाने का अर्थ है कि सीजन के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेलबर्न विक्सन्स एक घरेलू ग्रैंड फाइनल से चूक जाएंगे। लेकिन मुख्य कार्यकारी कैली रायन का कहना है कि होस्टिंग अधिकार बेचने से संगठन को अपनी गंभीर वित्तीय स्थिति को बदलने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। ब्रिस्बेन में सुबह के समय बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।